एस्ट्रो लाइफ लेकर आए हैं आपके लिए
ग्रहों का खेल
विद वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर जगजीत. व्यक्तित्व. रोज की तरह एक दिन एक रोगी जब सोकर उठा तो पता चला कि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व ही बदल चुका था. अब वह पूर्णतया एक नया व्यक्ति था. सावधानी के साथ एक नए व्यक्ति के तौर पर उससे अनेक प्रश्न पूछे गए. अपने पुराने व्यक्तित्व में वह सोनिक एवं ऑडियो स्मृतियों को रिकॉल नहीं कर सकता था और वह कलर ब्लाइंड भी था. सामान्य रूप से वह एक अत्यधिक बेचैन किस्म का व्यक्ति था, लेकिन नींद से जागने के बाद अब पूरी तरह बदल चुका था और बहुत शांत नजर आ रहा था. उसका स्वर धीमा था. इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी को विशेषज्ञों की भाषा में सिज़ोफ्रेनिया कह सकते हैं, लेकिन यह अलग प्रकार का केस था. यह स्वयं उस रोगी का ही मूल व्यक्तित्व था जिसका मस्तिष्क अब एक आदर्श मस्तिष्क था. जल्दी ही इस बात की भी पुष्टि होगी कि उसके कलर विजियो टोन ऑडियो रिकॉल ध्वनियों को फिर से सुन पाने की क्षमता तथा कलर विजियो एवं टोन ऑडियो कल्पना पूर्ण रूप से सामान्य थे और उनके बीच पूरी तरह तालमेल भी था. अब उसे यह ज्ञान था कि वह कब रिकॉल कर रहा है और कब कल्पना कर रहा है. व्यक्तित्व परिवर्तन से पहले उसकी ये सभी क्षमताएं सामान्य नहीं थी. अब वह जानना चाहता था. कुछ बातों पर ऑपरेटर से उसकी मदद चाहता था. उसे बहुत से काम करने थे. वह नहीं चाहता था कि परिवार के खर्चों का बोझ उसकी पत्नी पर पड़े और इस बारे में वह उसकी सहायता करना चाहता था. केवल एक ही घंटे में यह व्यक्तित्व कितना बदल गया था. उसने आसानी से कुछ मानसिक गणनाएं की जो पूरी तरह सही थी और जिसके बाद उसे सोने के लिए कह दिया गया. सोकर उठने के बाद वह फिर से सब कुछ भूल चुका था. मूल व्यक्तित्व के साथ यह हमारा पहला परिचय था. जिस व्यक्तित्व से हमने पहले परिचित थे यह उससे बिल्कुल अलग था. हमने जाना कि अनेक लोगों में आदर्श मस्तिष्क की क्षमताओं को प्राप्त कर पाना संभव था. मूल व्यक्तित्व में यह पाया कि यह हमेशा ही मजबूत, हिम्मती, सहनशील और अत्यंत रचनात्मक है. यह वही व्यक्तित्व होता है जिसकी मानसिक क्षमताओं को कुछ कम करके उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेमन्स जोड़ दें तथा जीवन की घटनाओं से लेकर कुछ दुख और उदासी जैसी भावनाओं को शामिल कर दें, तो एक रोगी व्यक्तित्व निर्मित हो जाएगा. बहुत ही खूबसूरत लिखा है डॉक्टर एल रॉन हर्बर ने एक विज्ञास का विकान की किताब में. और इसी के साथ हम जगजीत जी के साथ अपने आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं. जगजीत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में.
नमस्कार जी.
जगजीत जी, हमेशा की तरह हम अपने लिसनर्स के साथ आपके द्वारा जो भी रेमेडीज दी जाती हैं हॉरोस्कोप्स के ऊपर, हॉरोस्कोप्स को रीड किया जाता है. आज हम अपने इस प्रोग्राम में सबसे पहला हॉरोस्कोप कौन सा रीड करेंगे
जी? सबसे पहले जो डेट ऑफ बर्थ है यह है 1 अप्रैल 1993 और इनका जो क्वेश्चन है ये मैरिज के विषय में है कि मैरिज का योग कब है, कैसी मैरिज रहेगी. देखिए जी, इनके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से इनका जो होरोस्कोप बनता है और उसमें जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो इन्हें बताना चाहूंगा. इनका जो असेंडेंट है यानी कि मैं बात करूं लग्नेश जो कि इनको रिप्रेजेंट करता है, मून की स्थिति इनके होरोस्कोप में काफी अच्छी है. और जैसा इनका जो क्वेश्चन है मैरिज के विषय में, अगर मैं होरोस्कोप की बात करूं तो उसमें वो सातवें घर को रिप्रेजेंट करता है और उसके साथ साथ अगर फिफ्थ भाव जो कि लवर्स का रहता है, नाइन्थ भाव, उसको भी कंसिडर किया जाता है. अगर मैं बात करूं इनके होरोस्कोप में सप्तमेश की जो पोजीशन है, शनि की जो पोजीशन है इनके होरोस्कोप में वो अच्छी नहीं है. अगर मैं फिफ्थ लॉर्ड की भी बात करता हूँ वो भी अपने से आठवें है, क्योंकि हमेशा अपने से आठवें जो स्थिति है होरोस्कोप में ये अच्छी नहीं मानी जाती. और इसी प्रकार से अगर मैं जुपिटर की बात करूँ, नाइन्थ भाग के भाव के जो स्वामी है, उनकी भी स्थिति इनके होरोस्कोप में अपने से आठवें है, ये भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है. और इनके होरोस्कोप में अगर मैं बात करूँ मंगल की, तो मंगल भी ऐसी स्थिति पर है कि ऐसा व्यक्ति मैरिज के प्रति थोड़ा लापरवाह जरूर रहता है. और कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, जैसे कि मैंने बोला कि इनका जो सप्तमेश है या पंचमेश की बात करूं या भाग्येश की बात करूं, तो उनकी स्थिति इनके होरोस्कोप में अच्छी नहीं है. उसका इम्पैक्ट कई बार ऐसा भी देखने में है कि इंसान की जो मैरिज होती है वो डिले हो जाती है. और जैसा कि इन्होंने मैरिज योग के विषय में पूछा है, तो इस साल जो इनके प्लैनेट्स चेंज हुए थे, यानी कि चंद्रमा की जो मून की जो स्थिति थी वो मैरिज के लिए अच्छी नहीं थी. कई बार ऐसा होता है कि इस स्थिति में अगर मैरिज रहती है तो वो सक्सेस नहीं रहती, कहीं ना कहीं जाकर एक या दो महीने में डिफरेंस ओपिनियन जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं. मैं सिर्फ इन्हें यही कहना चाहूंगा कि जैसे इनके ग्रहों के योग बन रहे हैं, ऐसा व्यक्ति अगर 28th के बाद, यानी कि अभी जैसे इनको 26th रनिंग है आफ्टर 2 ईयर, अगर ये उस वक्त मैरिज करते हैं तो वो जो समय रहता है वो ऐसे व्यक्ति के लिए मैरिज का जो अच्छा समय माना गया है. और इस साल भी जैसे कि राहु की जो स्थिति चल रही है इनके होरोस्कोप में वो कुछ अच्छी नहीं है, तो इस साल तो इनका मैरिज का योग नहीं है. हाँ, नेक्स्ट ईयर और उससे जो नेक्स्ट रहेगा, वो जो साल इनके रहेंगे वो मैरिज के लिए जरूर अच्छे रहेंगे. लेकिन फिर भी मैं इन्हें यही कहना चाहूँगा, जहाँ भी कहीं ये मैरिज करते हैं, जहाँ भी इनकी प्रपोजल होगी, मैरिज का बात चलेगी, तो इन्हें खुद कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके ग्रहों में जैसे कि मैंने बोला सप्तमेश या इनकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है. इन्हें ये अपने माइंड में जरूर रखना चाहिए कि जहां भी मेरी मैरिज होगी वहां थोड़ा सा डिफरेंस ओपिनियन जरूर रहेगा. अगर इन बातों को समझकर ये मैरिज करते हैं कहीं भी, तो इनके लिए जो आने वाला समय है वो जरूर अच्छा रहेगा. और जहां तक रहा मैरिज के योग, तो इस साल इनके जो मैरिज के योग नहीं है, तो हाँ नेक्स्ट ईयर उसके बाद का जो समय है वो इनके लिए मैरिज के लिए अच्छा जरूर रहेगा.
जी जगजीत जी, और मैं चाहूंगी कि जब भी अगर वो आपसे इस सब्जेक्ट के बारे में, इस विषय के बारे में आपसे कुछ ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आपको पर्सनली मिलकर भी बातचीत की जा सकती है. आपको पर्सनल मिलने के लिए आपका फोन नंबर है 09278754, मोबाइल है 02103901113. ईमेल पर भी संपर्क किया जा सकता है और अपने क्वेश्चंस भेजे जा सकते हैं ईमेल पर भी, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने आने वाले प्रोग्राम्स में उनको शामिल किया जा सके. और ईमेल का पता है info@astrologerjagjit.com.
सुनो रे प्यारे
मैं डॉक्टर एल रॉन हर्बर्ट की बुक के बारे में बात कर रही थी. बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने अपने उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कि क्या न्यूनतम सामूहिक समानता के सिद्धांत के साथ हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे जहां कुछ मुट्ठी भर परिवर्तनशील तथ्य हमें मिल जाएं लेकिन कोई जवाब ना हो. बेहतर है ऐसा ना हो, इसलिए हम कुछ और प्रश्नों को सामने रखते हैं और देखते हैं क्या उनकी मदद से यह नियम स्पष्ट हो पाता है. हम क्या जान सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं कि जीवन कहां से आया था? कम से कम अभी तो नहीं. क्या हम पता कर सकते हैं कि जीवन किधर जा रहा है? ये जानना बहुत रोचक होगा, परंतु हम में से कुछ भी उस समय तक जीवित रहेंगे? फिर ऐसी कौन सी बात है जिसे हम जान सकते हैं? कौन, कब, कहां, क्या क्या ये जान सकते हैं कि जीवन क्या कर रहा है? अब हम अभिधारणा बनाते हैं कि एक स्थान से आरंभ होकर जीवन किसी दिशा में चल रहा है. यह पता करने से कि जीवन कहां से आया था, संभव है बहुत सी समस्याएं हल हो जाएं, परंतु अभी हमारे सवालों का समाधान पाने के लिए ये जानकारी भी अनावश्यक लगती है. शायद यह पता चल भी जाए कि जीवन किधर जा रहा है, परंतु हमारे लिए जानना भी जरूरी नहीं है. इसलिए अब हमारे पास इस समीकरण को सुलझाने के लिए कुछ ऐसे तथ्य शेष रह जाते हैं जो कि अपरिवर्तनीय है कि जीवन अपने मार्ग पर क्या कर रहा है. बहुत ही खूबसूरत लिखा है और अपने प्रोग्राम को जगजीत जी के साथ जारी करते हुए अभी हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो हमारे प्रोग्राम में जो आज का दूसरा हॉरोस्कोप है वो हमारे साथ शेयर करें.
जी हाँ, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 18th मार्च 1985 और इनका जो क्वेश्चन है ये इस साल के विषय में है. इन्होंने ये जानना चाहे कि ये साल जो वर्षफल है इनके लिए कैसा रहने वाला है. अगर हम इनके ग्रहों के योग देखते हैं, इनके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक इनका जो होरोस्कोप बनता है उसमें इनको जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं शनि की बात करूं उसकी भी स्थिति इनके होरोस्कोप में काफ़ी अच्छी है. लेकिन इनके होरोस्कोप में जो हमारे इच्छा पूर्ति घर को भी रिप्रेजेंट करता है या धन भाव को जो रिप्रेजेंट करता है, उनके जो स्वामी है बृहस्पति यानी कि जुपिटर, उसकी स्थिति इनके होरोस्कोप में अच्छी नहीं है. और इनके होरोस्कोप में अगर मैं बात करूं बिजनेस को जो प्लैनेट भी रिप्रेजेंट करता है उसकी भी स्थिति इनके होरोस्कोप में अच्छी नहीं है. अगर मैं मरकरी की बात करूं तो मरकरी भी इनके होरोस्कोप में डेबिलिटेट हैं. और इस साल जो इनके कुछ प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, अगर मैं बात करूं चंद्र, केतु या मंगल राहु के जो योग बन रहे हैं वो भी इस साल इनके अच्छे नहीं बन रहे. सबसे पहले तो मैंने यही कहना चाहूंगा कि इस साल इन्हें अपनी जॉब से जो भी ये कार्य करते हैं उससे कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती फिर भी इंसान कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच के वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम अपने द्वारा ही जरूर खड़ी कर लेता है. तो मैंने यही कहना चाहूंगा कि इस साल इन्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए. और दूसरा इन्हें ये चाहिए कि इस साल इन्हें कहीं ना कहीं कोई बिजनेस की जो ऑफर है ये रहेगी. कई बार ऐसा भी रहेगा इंसान बोलता है भाई मैं बिजनेस नहीं कर सकता या मेरे पास उतना पर्याप्त धन नहीं है, तो दूसरा इंसान ऐसा भी बोलता है भाई हम आपकी मदद कर देंगे, आप ये कीजिए. तो मैंने यही कहना चाहूंगा कि इन्हें 36 ईयर से पहले बिजनेस नहीं शुरू करना चाहिए और ना ही पार्टनरशिप में शुरू करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो पार्टनरशिप है ये ज्यादा लंबी नहीं चलती. कारण कुछ भी रहे, कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि जब ऐसे ग्रहों के योग रहते हैं तो इंसान पार्टनरशिप करता है तो वैसे ही बिजनेस स्लो हो जाता है. तो बहुत सारे ऐसे कारण जो हैं इनके होरोस्कोप में हैं. तो मैंने यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इन्हें जॉब में ही रहना चाहिए और बिजनेस की तरफ नहीं जाना चाहिए. और इस साल जैसे मैंने बोला केतु और मंगल राहु की स्थिति इनके होरोस्कोप में अच्छी नहीं है, तो मैंने ये कहना चाहूंगा कि इन्हें इस बार किसी से कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए, चाहे वो फैमिली मेंबर्स रहें या जहां पे कहीं हम कई बार काम करते हैं हमारे कुलीग साथ या हमारे दोस्त मित्र, कहीं भी बहस नहीं करनी चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि हम बहस करते हैं दूसरे को पसंद नहीं रहती, छोटी छोटी बातों से ही बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं. क्योंकि जैसा कि राहु की अगर मैं बात करता हूं, ये एलिगेशन के योग बनाता है. जब मंगल राहु का योग जिस भाव में रहता है, कई बार ऐसा भी देखने में आया कि जब ऐसे योग बनते हैं तो इंसान इंसान को पैसे से भी लॉस जरूर रहता है. कई बार ऐसा होता है कि अपनी वैल्यूएबल जो सामान है, कोई चीज है, इवन की मोबाइल है, कहीं रख के भूल गए, वो नहीं मिलता, या कुछ ना कुछ ऐसा इंसान की जिंदगी में जरूर होना शुरू हो जाता है. और दूसरा, कोई ना कोई एलिगेशन लग जाता है, कोई कोर्ट केस शुरू हो जाता है. तो मैंने यही कहना चाहूंगा कि इस बार इन्हें काफी सावधानी से रहना चाहिए, किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए. जो भी बात है, अगर प्यार से ये निपटाने की कोशिश करेंगे इस साल, तो वो इनके लिए जरूर अच्छा रहेगा. और जो ये समय है, ये मार्च नेक्स्ट ईयर तक इनके लिए है. और मैंने यही दोबारा फिर कहना चाहूंगा कि इन्हें जॉब में रहना चाहिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, किसी से क्रोध नहीं करना चाहिए. और जब भी ये कहीं धर्म स्थान पर जाते हैं, अगर वहां पर चने की दाल का ये दान करते हैं, डोनेट करते हैं, भगवान से अपने अच्छे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये साल इनके लिए अच्छा रहेगा.
चलिए जगजीत जी से और भी बातचीत करते हैं अपने प्रोग्राम में, मगर उससे पहले आप सबके साथ जगजीत जी की जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो शेयर कर देते हैं, ताकि आपको जब मौका मिले, जब आप चाहें उनसे बातचीत करने के लिए, आपके पास नंबर्स रहें. तो 02103901133 जगजीत जी का मोबाइल है, लैंडलाइन है 09278754.
अरे बोल भाई राम 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 राम, छोड़ के तू बंदे दुनिया के सब काम. बोलो हर पल बोलो सुबह शाम, सबको तू बोल प्यारे राम राम राम. बोल भाई राम 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 राम, तू बंदे दुनिया के सब काम, छोड़ के तू बंदे दुनिया के सब काम. हो सब को तू बोल प्यारे राम राम राम. तेरी नैया राम जी पार लगाए, भव सागर से तुमको तराए. तेरी नैया राम जी पार लगाए, भव सागर से तुमको तराए. देव बनाए सब बिगड़े काम,
छोड़ के तू बंदे दुनिया के सब काम,
हो
छोड़ के तू बंदे दुनिया के सब
तो मेरे हैं सुख के धाम.
छोड़ के तू बंदे दुनिया के सब काम,
हो
छोड़ के तू बंदे दुनिया के सब काम.
सारे जग को एक बात मैं कह दूं, ले लो
तू बड़ी ना लगेगी ना लगेगा दाम
छोड़ के तू बंदे दुनिया के सब काम
ओ सारे बाकी जग के काम
छोड़ के तू बंदे दुनिया के सब काम
ओ
छोड़ के तू बंदे दुनिया के सब
मन में राम का नाम तू रख ले राम नाम का अमृत चख ले मन में राम का नाम तू रख ले राम नाम का अमृत चख ले राम चरण में कर विश्राम
छोड़ के तू बंदे दुनिया के सब काम
ओ
छोड़ के तू बंदे दुनिया के सब काम
राम जी करेंगे तेरी हर सुन राम नाम की कर ले कमाई राम जी करेंगे तेरी हर सुनवाई राम नाम की कर ले कमाई जग में तू पाएगा राम
छोड़ के तू बंदे दुनिया के सब
राम के नाम को जो न जपेगा भव सागर से कैसे तरेगा राम के नाम को जो न जपेगा भव सागर से कैसे तरेगा पार लगाए नैया राम
छोड़ के तू बंदे दुनिया के सब काम
ओ
छोड़ के तू बंदे दुनिया के सब
राम नाम के लड्डू खा के जीवन को तू सफल बना ले राम नाम के लड्डू खा के जीवन को तू सफल बना ले
पीना है तो पी ले राम का जाम
छोड़ के तू बंदे दुनिया के सबका
अरे बोल भाई राम 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 राम
छोड़ के तू बंदे दुनिया के सबका
बोलो हर पल बोलो सुबह शाम
बहुत ही खूबसूरत भजन था काफी अच्छा लगा जगजीत जी आपके प्रोग्राम में हमें डिफरेंट डिफरेंट भजन भी सुनने को मिलते हैं जगजीत जी लेकिन अभी वक्त भी इतना हो गया है कि हम लोगों को अपना जो बाकी के हॉरोस्कोप हैं हम लोग अपने आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे उम्मीद करते हैं कि लिसनर्स को हमारा जो आज का मैसेज है पहुंच गया होगा मगर अगर नहीं भी पहुंचा तो वो आपको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने हॉरोस्कोप्स के बारे में या एस्ट्रोलॉजिकली कुछ भी सब्जेक्ट अगर उनके पास है उसके बारे में आपसे डिस्कशन कर सकते हैं आपसे अपॉइंटमेंट बना सकते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि हमारे लिसनर्स का और हम सब का आने वाला वक्त सभी का बहुत बहुत अच्छा निकले मैं इसी प्रोग्राम से आप सबसे इजाजत चाहती हूँ नमस्कार
नमस्कार जी
www.org.nz/ग्राहों का खेल